ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के लिए 22,000 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
Historic decision has been taken today. Complete electronics की manufacturing value chain में ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है एंड दिस विल बी ओवर 6 years. बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेज, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर, और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 91,600.
श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ सीजन में 2,10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले 4 लेन के ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड पटना, आरा, सासाराम गलियारे के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये इस साल की 1 जनवरी से लागू होगा। इसे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है। भारत अब न केवल विश्व व्यवस्था में भाग ले रहा है बल्कि भविष्य को आकार देने और उसे सुरक्षित करने में भी योगदान दे रहा है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति सभी से दूरी बनाए रखने की थी, लेकिन अब सभी के साथ मिलकर काम करने की है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रशिक्षण और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। इन अनुबंधों की कीमत 62,700 करोड़ रूपये है। म्यांमा में आज 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। थाईलैंड, उत्तर पूर्वी भारत और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने म्यांमा और थाईलैंड के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी संभावित सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। म्यांमा और थाईलैंड में आज आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 144 हो गई है और 732 लोग घायल हुए हैं। म्यांमा की सैन्य सरकार के प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग ने आज शाम एक टेलीविजन संबोधन में बताया कि भूकंप से नेपिता में 96 लोग, सागाइंग में 18 और मांडले में 30 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भाजपा ने आज आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़े समुदायों के लिए आवंटित बजट का उचित उपयोग नई दिल्ली में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं थी। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति पेश करने और अपने लिए एक शानदार आवाज बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। जॉर्डन में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा फाइनल में पहुंच गई है। महिलाओं की 62 किलो के फाइनल में मनीषा का मुकाबला कोरिया की ओके जू किम से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।